समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार अलका। हेलो एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड ऑल द लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टुडे वी विल बी गिविंग यू द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। वी विल ऑल्सो बी एक्सप्लोरिंग टुडेज हिस्ट्री फॉर दिस डे, दैट इज 22nd ऑफ अप्रैल। We'll also provide you Metro City updates in a lot detail. And also, listeners, be with us for the next half an hour. Stay tuned with us till the very end of the program. First, we'll begin with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, रणनीति, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयासों का भी उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सहयोग को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। श्री वेंस के साथ उनके बच्चे, पत्नी उषा और अमेरिका प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। श्री मोदी ने उनके सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष फरवरी में वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी उपयोगी चर्चा को याद किया, जिसने भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ सहयोग की रूपरेखा तैयार की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति श्रीमती उषा वेंस और उनके बालकों को भारत में सुखद और सफल प्रवास के लिए शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस वर्ष उनकी भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंस कल रात जयपुर पहुंचे। वे अपने परिवार के साथ 3 दिन जयपुर में रहेंगे।
Prime Minister Narendra Modi is set to embark on a two-day official visit to Saudi Arabia from today at the invitation of Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman. This visit underscores the deepening strategic partnership between India and Saudi Arabia, marked by robust cooperation in trade, energy, defense, and people-to-people ties. The visit is also expected to further strengthen bilateral relations and facilitate new avenues of collaboration aligned with the transformative goals of Vision 2030 with India's global advocacy on gender equality.
The Kingdom of Saudi Arabia has implemented transformative changes in recent years, dismantling the long-standing barriers for women. Legal reforms have lifted the driving ban, reduced male guardianship requirements, and introduced anti-harassment legislation. These changes have empowered Saudi women with significantly greater personal autonomy and legal protections. Now let's hear from Dr. Kavita, a member of Indian diaspora who is working as an assistant professor at Jeddah.
As an expatriate living in Saudi Arabia, I have witnessed firsthand the remarkable progress in women's empowerment over the past few years. One of the most significant milestone was when women gained the right to drive. This single change has had a profound impact, allowing women greater freedom of movement, access to jobs, and the ability to support their families more independently. Saudi Arabia presents a wealth of opportunities for Indian women to thrive, contribute, and lead in a changing Middle East.
The economic impact of these reforms is already evident. Female workforce participation in Saudi Arabia has increased dramatically from 23.2% in 2016 to over 36.2% by 2025, exceeding the government's original Vision 2030 targets. Women now own approximately 45% of small and medium enterprises in the kingdom, marking a substantial shift in the business landscape. Now let's hear from Lamha Hamza, who is working as a marketing manager at a dates factory in Jeddah.
Working as a female gives you more points. The government itself, so all the companies are now directing towards like having more females.
Saudi women are increasingly visible in the previously male-dominated sectors with over 3,500 new employed in the justice system as lawyers and legal representatives. Leadership positions in healthcare, hospitality and business are similarly seeing growing female representation. Supported by the government initiatives designed to remove employment barriers and promote entrepreneurship opportunities for women. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Jeddah.
Well, listeners, today is Earth Day. The day is celebrated worldwide to demonstrate support for environmental protection. The first Earth Day celebrations were held in the year 1970 after the day was suggested at the UNESCO summit in the year 1969. The theme for this year is Our Planet, Our Power, Our Planet. Our correspondent has filed this report.
The day aims to raise awareness about environmental issues and inspiring action to protect our planet. It educates the public on climate change, pollution and sustainability while mobilizing community efforts like cleanups and tree planting. The day fosters community engagement and promotes eco-friendly practices, encouraging individuals and businesses to adopt sustainable habits. This year's theme urges individuals, groups and governments to triple the production of clean energy by 2030. Emphasizing the pressing need to switch to renewable energy. The campaign highlights how vital it is to lessen dependency on fossil fuels and invest in a sustainable, equitable and inclusive energy future in order to tackle climate change. Priya Mondal for Akashvani News, Delhi.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और आर्थिक विकास को गति देने में बांस की क्षमता का पता लगाना है. इसका आयोजन लातूर की फिनिक्स फाउंडेशन संस्था और भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर द्वारा किया जा रहा है. सम्मेलन में देश भर से लगभग 1,200 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है. एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की आज बैठक होगी. बैठक के पहले सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी. इसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एन झा के साथ एक सत्र होगा. अगले सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी एस चौहान शामिल होंगे. अंतिम सत्र राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होगा. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईस्टर पर 30 घंटे के एकतरफा युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के बाद यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान पूरी ताकत के साथ फिर से शुरू हो गया है. रविवार आधी रात तक चले युद्ध विराम में दोनों पक्षों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए और दावा किया कि समझौते का उल्लंघन किया गया है. मॉस्को में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने माना कि युद्ध विराम के दौरान यूक्रेन के सशस्त्र बलों की सैन्य गतिविधि में कमी आई. पुतिन ने यह भी कहा कि वो आम नागरिकों पर हमलों से बचने के यूक्रेन के प्रस्ताव के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं. भारत सरकार ने दिवंगत वेटिकन सिटी के सर्वोच्च पादरी पोप फ्रांसिस के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है. पोप फ्रांसिस का कल निधन हो गया. 2 दिन का राजकीय शोक आज और कल रहेगा, जबकि अंतिम संस्कार के दिन भी राजकीय शोक होगा. देशभर में राजकीय शोक के दौरान सभी इमारतों पर राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा.
Let's give you the weather update as well. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave conditions over Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh, Vidarbha, Odisha and Chhattisgarh during the next 2 days. According to the Met Department, Bihar, Jharkhand, Konkan, Goa, Marathwada, Gujarat, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Rayalaseema are very likely to witness hot and humid weather conditions. IMD also predicted heavy to very heavy rainfall at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya today. Parts of Odisha, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, coastal Andhra Pradesh, Yanam, Rayalaseema and interior Karnataka are very likely to experience thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds during the next 2 to 3 days. Now let's give you the sports update, beginning with shooting. Well, India's Simranpreet Kaur Brar has clinched her maiden senior international medal with a silver in the women's 25-meter pistol event at the International Shooting Sport Federation, ISSF World Cup in Lima, Peru. The Indian shooter shot a total of 33 hits in the 10 series of 5 rapid-fire shots final, finishing one hit behind China's Sun Yiji, who won back-to-back World Cup golds in the event. A second Chinese, Yao Kenshun, won bronze with 29 hits to her name. Meanwhile, Paris Olympics double medalist Manu Bhakar finished fourth. This marks India's fourth silver medal at the Lima World Cup, adding to the country's tally of two golds and one bronze.
बिल्कुल और आईपीएल की बात करें तो T20 क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 39 रन से हरा दिया. कोलकाता के ईडन गार्डन में 199 रन के जवाब में कोलकाता की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन ही बना पाई. कोलकाता के कप्तान अजिंक्य राणे ने अर्धशतक बनाया. इससे पहले गुजरात ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए. कप्तान शुभमन गिल ने 90 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. साई सुदर्शन ने 52 रनों का योगदान दिया. गुजरात 12 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है जबकि कोलकाता 6 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है. आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा. मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा. दिल्ली फाइनल अंक तालिका में दूसरे स्थान पर और लखनऊ 5वें स्थान पर है. न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का. पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं शगुन.
यस अलका, आई विल बिगिन विद चेन्नई. The 8 Principal Special Court for CBI cases, Chennai sentenced E. Rajendran, then manager, agency field and collections, card field collections department, Standard Chartered Bank, Rajaji Salai, Chennai, to 4 years imprisonment, along with a fine of 50,000 rupees in a disproportionate case. He was sent to judicial custody on Monday. The agency had registered the instant case on 29th of December in 2021 against E. Rajendran, who in the capacity of a public servant had intentionally enriched himself illicitly during the period of his office for alleged disproportionate income, which was 93.65% disproportionate to his known sources of income. After completion of investigation, charge sheet was filed by CBI on 3rd March in 2023. Against accused before the Honourable 8 Principal Special Court for CBI cases, Chennai. The court, after trial, held accused guilty and sentenced him accordingly. I have one more update from Chennai. Southern Railway has opened a feedback channel for passengers to share suggestions on the newly launched air-conditioned suburban train. Passengers can also send the feedback via WhatsApp. Currently, the train operates only 6 services a day on the Chennai-Tambaram-Chengalpattu route. Now moving on to Bengaluru. Bruhat Bengaluru Mahanagarpalika Chief Commissioner Tushar Giri Nath yesterday directed his officials to remove unauthorized advertisements in the city within the corporation limits. He noted that the violations have increased lately and appropriate measures are needed to control them. The Chief Commissioner directed the Assistant Executive Engineer, Assistant Engineer and Junior Engineers to remove unauthorized advertisements, register FIR against the culprits, recover the expenses incurred towards removal of such advertisements and impose double the fine. Speaking about the precautions being taken before the arrival of monsoon in the city, Tushar Girinath has said that the storm water drain must be cleaned of slit and side drains dredged. He also ordered the fixation of potholes. Now turning our attention to Hyderabad, Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has made a strong pitch for investments in the state across a wide range of sectors like circular economy, urban infrastructure and environmental rejuvenation at the World Expo held in Osaka in Japan yesterday. The Chief Minister, who led the Telangana Rising delegation to Japan, batted for investments from Japanese companies in initiatives like Musi Rejuvenation, Regional Ring Road, Radial Roads, Expansion of Hyderabad Metro Rail, Future City, as also in sectors like software, futuristic technologies including artificial intelligence, besides pharma, bulk drugs, tourism, textiles, agriculture and green power. He said the delegation's visit envisaged strengthening the historical friendship through long-term partnerships. He asked for building partnerships that will empower people, partnerships to design the future, partnerships to inspire and drive innovation. He invited the Japanese firms to come to Hyderabad, design and manufacture their products, and harness the strength of the location to make it a launch pad for the Indian market as well as a strategic base for global exports. Industries Minister D. Sridhar Babu also explained that the state's investment support included single window approvals, customized incentives. So these were the updates, Alka, from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Alka will be giving you the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
बिल्कुल, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 250 से अधिक वातानुकूलित मिनी इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करेंगी। इन बसों की लंबाई 9 मीटर होगी और इसका नाम देवी होगा। हरे रंग की ये बसें आधा दर्जन मार्गों पर एक साल के ट्रायल रन के बाद सड़कों पर उतरेंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि नई बसों का शुभारंभ विश्व पृथ्वी दिवस के साथ होगा और उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा नई बसों में जारी रहेगी जो मौजूदा किराया दरों पर चलेगी। एक दिशा में 12 किलोमीटर से कम लंबे मार्गों के साथ दिल्ली मेट्रो की फीडर बसों की तर्ज पर लाई जा रही है ये बसें और देवी बसें यात्रियों को संकरी सड़कों से मुख्य सड़कों तक लाएगी जहां दिल्ली परिवहन निगम की 12 मीटर लंबी बसें सेवा प्रदान करती हैं। आज होने वाले शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। नई वातानुकूलित देवी बसों को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास सेवा नगर स्थित कुशक नाला डिपो से रवाना किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर स्थित संकल्प भवन में संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा को देश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी कहा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस हॉस्टल में देश भर से सिविल सेवा की तैयारी करने वाली छात्राएं आकर रह सकती हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी से बचने के लिए सरकार ने हीट एक्शन प्लान जारी किया है और शगुन, ये जो हीट एक्शन प्लान है वो सरकार ने तो जारी किया ही है और ये हम सब का भी कर्तव्य है कि हम लोग भी अपना प्लान जो है वो तैयार रखें क्योंकि गर्मी तो पिछले साल जितनी पड़ेगी उससे ज्यादा। बिल्कुल, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हीट प्लान को लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना दिल्ली वासियों को अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की खतरनाक स्थिति से बचाने के लिए एक वैज्ञानिक और जन उन्मुख योजना के रूप में तैयार की गई है। ये एक्शन प्लान एनडीएमए के सहयोग से डीडीए ने तैयार किया है। इस प्लान के अंतर्गत शहर भर में 3000 डिजिटल वाटर एटीएम लगाए जाएंगे और वहीं धूप से बचने के लिए सरकार फुटपाथों पर कूलिंग शेड्स भी लगाएगी और प्लान के अंतर्गत दिल्ली के 5500 से अधिक स्कूलों में 14 लाख बच्चों को आपदा प्रबंधन और हीट वेव से बचाव के लिए जागरूक और प्रशिक्षित भी किया जाएगा। वहीं दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए कल नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर पर्चा दाखिल किया। भाजपा की ओर से राजा इकबाल सिंह ने मेयर पद के लिए और जय भगवान यादव ने डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस की ओर से मनदीप सिंह ने मेयर और अरबिया खान ने डिप्टी मेयर पद के लिए पर्चा दाखिल किया। दोनों पदों के लिए चुनाव 25 अप्रैल को निगम की सामान्य निकाय बैठक में होगा। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली मेयर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी क्योंकि पार्टी के पास दिल्ली नगर निगम एमसीडी की संख्या बल में कमी है। और बात कर ले मुंबई की तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक टीम ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र का 3 दिवसीय दौरा किया। कल जिला सूचना कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 लॉन्च किया है और ये दौरा उन्नत संस्करण के लिए राज्य की तैयारियों का आकलन करने के लिए है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल वार रूम बैठक के दौरान 30 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को उन्हें तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया क्योंकि वे राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वार रूम बैठक में मुंबई, विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कई प्रमुख योजनाओं की समीक्षा शामिल थी। और वहीं शगुन, एक कुंभ तो अभी गुजरा है
जी,
जिसमें सब लोग गए थे और प्रयागराज का कुंभ तो ऐतिहासिक कुंभ था।
True,
तो आने वाला जो सिंहस्थ कुंभ है वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के नाशिक जिले में होने वाले आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नाशिक आउटर रिंग रोड परियोजना का प्रस्ताव तुरंत कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में राज्य सचिवालय में एक बैठक के दौरान नाशिक आउटर रिंग रोड परियोजना के काम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नाशिक के विभागीय आयुक्त और नाशिक के संरक्षक सचिव प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए जाने वाले सड़क कार्यों की योजना अगले 10 दिनों में लोक निर्माण विभाग को सौंपें। उन्होंने कहा कि शहर में यातायात के प्रवाह को कम करने के लिए उचित योजना बनाना आवश्यक है, क्योंकि आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए मुंबई, गुजरात, छत्रपति संभाजीनगर, शिरडी, धुले और पुणे से श्रद्धालुओं के नाशिक आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इन मार्गों पर सड़कों को मजबूत करने के साथ साथ इन सड़कों को पार्किंग की सुविधा भी यहां बनाई जानी चाहिए और मुख्यमंत्री ने नाशिक शहर में आने वाले श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए ई बस एकीकृत सुविधा का प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल एक महत्वपूर्ण फैसले में देश भर के हवाई अड्डों पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त सुविधाओं पर चिंता व्यक्त की। और शगुन, ये वाकई में बहुत ही चिंता की बात होती है कि जब वरिष्ठ नागरिक कहीं भी, चाहे वो हवाई अड्डा हो या रेलवे स्टेशन हो, अगर उनको चलना पड़ता है तो उनके लिए ये बड़ा ही कष्टकारी हो जाता है। बिल्कुल, और उनके साथ जो लोग रहते हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय हवाई अड्डा संचालकों और एयरलाइन कंपनियों को निवारक उपाय करने का निर्देश दिया है, ताकि हवाई अड्डों पर व्हीलचेयर के अभाव से किसी भी वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और बीमार व्यक्ति को परेशानी न हो।
सो दैट दे डोंट फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज़ ऑफ दिस, राइट?
बिल्कुल। और कोलकाता की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल पश्चिम बंगाल के पश्चिम जिले के सालबोनी में 2 सौर ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्रों और 1 उद्योग पार्क की आधारशिला रखी। दोनों बिजली संयंत्रों की क्षमता 800 मेगावाट है। पश्चिम बंगाल सरकार और बिजली संयंत्रों के लिए जिम्मेदार इकाई जिंदल समूह के बीच 25 साल का समझौता हुआ है। और आज सवेरे में अब समय है मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। दिल्ली की बात करें तो आसमान साफ रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है शगुन, और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बिल्कुल, एक्शन प्लान की जरूरत है। और वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
ऑलराइट, नाउ अलका, लेट्स टॉक अबाउट चेन्नई। Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Now, Bengaluru is also expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Hyderabad, talking about Hyderabad now, it is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between minimum of 26 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius. Alka.
बिल्कुल, और अब समय इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 22 अप्रैल है और सबसे पहले आज एक विशेष दिन भी है, और शगुन उसके लिए चार लाइनें हैं कि कल 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 करते रहते, कल कुंजों में बहते हैं, कान लगाकर सुनो किसी की कीर्ति कहानी कहते हैं। तो ये प्रकृति है, और प्रकृति है तो पृथ्वी है, पृथ्वी है तो प्रकृति है, सारी चीजें जो है आपस में।
राइट, एंड दीज लाइंस एक्सप्लेन्स दैट वेरी वेल।
बिल्कुल, और पृथ्वी दिवस की हम बात कर रहे हैं तो समूचे विश्व में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस को पहली बार 1970 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनना था और बनाना था।
And let me also tell our listeners about the first Earth Day, Alka. It was celebrated in the year 1970 and as a nationwide environmental teach-in, and was organized by Senator Gaylord Nelson and activist Dennis Hayes. Well, this event, it aims to raise public awareness about the growing environmental problems and the need for conservation. It's the need of the hour.
Bilkul.
Since there were no, at that time, there were no legal or regulatory mechanisms to protect our environment. And Senator Gaylord Nelson created Earth Day in the spring of 1970 as a way to force this issue onto the national agenda. Very important particular day was set up on Bilkul. That particular day.
बिल्कुल, और पृथ्वी पर अक्सर उत्तरी ध्रुव की ठोस बर्फ का कई किलोमीटर तक पिघलना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकने वाली ओजोन परत में छेद होना, भयंकर तूफान, सुनामी और कई प्राकृतिक आपदाओं का होना, जो भी हो रहा है, इन सब के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। क्योंकि कई बार वो ये सोचता है कि वो सुपर पावर है, लेकिन पृथ्वी बता देती है, धरती बता देती है एक करवट से कि अभी भी जो है वो जो शक्ति है
बिकॉज ऑफ आवर डेफिनेटली बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज यू नो द नीड दिस इज नीड फॉर द आवर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आवर एनवायरमेंट.
बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जो हमारे सामने है ये आपदाएं पृथ्वी पर ऐसे ही होती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से जीव जंतु और वनस्पति का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है. लेकिन हमें हताश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग पेड़ लगा रहे हैं और ये जागरूकता सब में आई है, बच्चों में भी आई है, बड़ों में भी आई है कि अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा.
यस, वेरी राइटली सेड देयर अलका, प्लांट ट्रीज.
बिल्कुल,
यस
बिल्कुल.
एंड नाउ लेट्स टेक आवर लिसनर्स वे बैक इन टाइम. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ईयर 1876. वेल द फर्स्ट ऑफिशियल नेशनल लीग बेसबॉल गेम वॉज प्लेड here in the year 1876 which Boston Red Cap defeated the Philadelphia Athletics 6-5.
बिल्कुल, और आप खेलों की बातें करें तो आज ही के दिन यूनान के एथेंस में 10वें ओलंपिक खेलों की भी शुरुआत हुई थी 1906 में.
Now in the year 1921 Netaji Subhash Chandra Bose resigned from the Indian Civil Service to participate in India's freedom struggle.
बिल्कुल, और 1977 में आज ही के दिन ऑप्टिकल फाइबर को पहली बार टेलीफोन ट्रैफिक में यूज किया गया था.
इन 1958 एडमिरल आर डी कटारी बिकेम द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड अज्यूम्ड कमांड फ्रॉम द देन सर्विंग ब्रिटिश ऑफिसर.
बिल्कुल, और अब बात कर लें पुनीतिथि और जयंती की. भारत के जाने माने वायलिन वादक लालगुड़ी जयरमन, आज जो है वो उनकी पुण्यतिथि है. तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और संस्कृत के संगीतकार के रूप में उनकी विशेष पहचान थी. अपने समृद्ध कल्पना शक्ति, तीव्र अभिग्रहण क्षमता और कर्नाटक संगीत में अग्रणी संगीतज्ञों की व्यक्तिगत शैली को अपना लेने की उनमें क्षमता थी.
Well, as you said, let me also tell our listeners that Carnatic violinist, vocalist also, he has been vocalist and also composer. Well, he grouped commonly with M.S. Gopalkrishnan and T.N. Krishnan as part of the violin trinity of Carnatic music.
बिल्कुल, और 1972 में इन्हें पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.
जी, now moving on, today we are also remembering Pandit Madhav Gudi. Well, Hindustani classical vocalist, again I'm talking about him. He specialized in khayal and renditions of devotional music, particularly of Dasavani. Well, as a 16-year-old, I would like to explore that he would stand under the swirling waters of the Shalmala River and then sing. Well, he used to come up and then gasp for breath and then again go down into the water again and then start singing. And he would do this thing for hours. Well, he has said, and now I'm quoting him, he said that water has its own rhythm and I wanted to absorb that into my singing. He said that, Pandit Madhav Gudi.
Bilkul, aur pani aur vani, in dono ka bada sambandh hota aur bada gehra sambandh hota hai.
True.
Baat kar lein, aaj hi jayanti hai, prasidh engineer samasevi aur Bharat mein harit kranti ke nayak Sar Ganga Ram ji ka, aur inka janm 22 April 1851 को हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर और लाहौर में हुई थी. और भारत लौटने पर गंगाराम ने 12 वर्ष तक लाहौर में काम किया. वहां के प्रसिद्ध भवन, जलाशय आदि उन्हीं के नेतृत्व में बने और 1930 में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर उन्हें पटियाला रियासत ने बुला लिया और उन्होंने सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी बनाई जिसके अंतर्गत विधवा आश्रम, अपाहिज आश्रम, चिकित्सालय और संस्थाओं की स्थापना की गई. और 10 जुलाई 1927 को लंदन में इनका निधन हो गया. और आज हम याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी को.
जी,
आज ही के दिन 1916 में इनका जन्म हुआ था. और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये उस समय 1949 में इन्होंने श्रीमती पिक्चर्स के बैनर तले कई फिल्मों का निर्माण किया था. और शगुन आज ही हम याद कर रहे हैं बलदेव राज चोपड़ा को, यानी बीआर चोपड़ा को. और इनका भारतीय ये सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक थे और जिन्हें जमाना बीआर चोपड़ा के नाम से जानता है. इन्होंने एक ऐसे फिल्मकार के रूप में इन्हें याद किया जाता है जिन्होंने पारिवारिक, सामाजिक और साफ सुथरी फिल्में बनाकर लगभग 5 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया.
एंड लेट मी टेल आवर लिसनर्स आल्सो दैट ही वाज अवार्डेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड एंड पद्म भूषण आल्सो.
बिल्कुल, और महाभारत भला कौन भूल सकता है जो कि 95% दर्शकों के घर तक ये पहुंचा था और उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना दर्ज किया था.
Well, today we are also remembering Ammu Swaminathan, social worker and political activist during the Indian independence movement and a member of the Constituent Assembly of India. Well, she was a trailblazer in the Constituent Assembly of the year 1946 and actively participated in every debate and meeting, contributing significantly to the drafting of the Indian Constitution.
बिल्कुल. और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से हम अनुमति लें तो अलका सिंह और शगुन चोपड़ा को अनुमति दीजिए. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी.
वेल, स्टे ट्यून्ड लिसनर्स, फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन, विच इज फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन.
नमस्कार.